आगे सबक देखिए भाई, अल जमउ व हुवा सबबुन काइमुम मकाम सबबैन शर्तुहु ऐ शर्तु कियामिही मकाम सबबैन सीगतु मुंतहल जुमू وهي الصيغة التي كان أولها مفتوحا وثالثها ألفا وبعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن وهي الصيغة التي لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى ولهذا سميت صيغة منتهى الجموع. अच्छा भाई, गुज़श्ता सबक में असबाब मनासर्फ में से पांचवां सबब उजमा हमने पढ़ा था भाई। उसके बारे में साहिब जामी ने आपको बतलाया कि उजमा इसे कहते हैं कि लफ्ज जो है उन अल्फाज में से हो जिनको गैर अरब ने वजा किया हो भाई। और इसके मनासर्फ में मुअस्सिर होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि अलमियत हो भाई, और ये अलमियत अजमी जुबान में होनी चाहिए ताकि अरब जब इसे अपनी जुबान की तरफ नकल करें तो ये तगैयुर और तबद्दुल से महफूज रहे। वजह यह कि किसी भी दूसरी जुबान के अल्फाज जब किसी जुबान वाले अपनी तरफ मुंतकिल करते हैं अपनी जुबान की तरफ, तो उस लफ्ज की अदायगी उनके लिए दुश्वार होती है, सकील होती है, तो उसमें वो अपनी जुबान के मुताबिक तब्दीली कर लेते हैं। तो यहां पर भी अगर किसी अजमी लफ्ज को अरबी जुबान की तरफ मुंतकिल किया जाएगा तो अरब उसके अंदर तब्दीली कर देंगे और इससे उसका सिकल खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा शर्त है कि वो लफ्ज अजमी जुबान में ही आलम होना चाहिए, और आलम जो होता है वो बिकद्र इम्कान तगैयुर और तसर्रुफ से महफूज होता है। तो जब ये आलम होगा तो अरबी जुबान की तरफ जब अरब इसे मुंतकिल भी करेंगे तो इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, और जब तब्दीली नहीं होगी तो फिर इस लफ्ज की अदायगी उनके लिए सकील होगी, और जिसकी वजह से ये उजमा सबब बनेगा गैर इंसिराफ का। और इसके साथ एक और शर्त भी साहिब काफिया ने जिक्र की कि दो चीजों में से एक चीज मजीद इसमें होनी चाहिए कि यह कलिमा तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल हो, और अगर तीन हरूफ पर मुश्तमिल है तो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक होना चाहिए भाई। चुनांचे नूहुन भाई, नूहुन इसके अंदर पहली शर्त तो पूरी है, आलम तो है और आजमी जुबान का आलम है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं, यानी यह तीन हरूफ से ज्यादा पर नहीं मुश्तमिल या दरमियान वाला इसका मुतहर्रिक नहीं है, तो इसलिए यह मुनसरिफ है भाई। मैंने आपको यह भी बतलाया था कि यह जो दूसरी शर्त है इसमें साहिब काफिया ने दो चीजें जिक्र की, दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक होना चाहिए या तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल होना चाहिए। अलबत्ता इमाम सीबोवे के नजदीक दरमियान वाले हर्फ के मुतहर्रिक होने का कोई एतबार नहीं, बल्कि उजमा के लिए एक शर्त आलमियत है और दूसरी शर्त यह है कि तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल हो, लेकिन साहिब काफिया के नजदीक दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक हो वो भी मोतबर है। चुनांचे आगे एक लफ्ज आएगा और वो क्या, शतर भाई। शतर ये साहिब काफिया के नजदीक इसका दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो इसके अंदर उजमा मुअस्सिर है, यह आलम भी है और दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक भी है। लेकिन इमाम सीबुवे और दीगर नहवी हजरात जो उनके साथ हैं वो फरमाते हैं कि यह शतर गैर मुनसरिफ नहीं है बल्कि यह मुनसरिफ है, क्योंकि उनके नजदीक उजमा के मुअस्सिर होने के लिए तीन हरूफ से जायद होना जरूरी है भाई। और फिर इसके बाद यह भी बतलाया था साहिब जामी ने कि कभी कभार वो लफ्ज जिसको अरबी जुबान की तरफ नकल किया गया वो हकीकतन अजमी जुबान में भी हलम होगा, जैसे इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भाई अरब जो है, यह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो है यह अरबी जुबान का आगाज हुआ आहिस्ता आहिस्ता, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरब से पहले गुजरे हैं, तो ये इब्राहिम लफ्ज जो है ये आजमी नाम है और ये आजमी जुबान में भी आलम था भाई। तो تو یہ مثال ہے اس لفظ کی جو حقیقتاً عجمی زبان میں علم تھا بھائی. اور کبھی کبھار حقیقتاً تو عجمی زبان میں علم نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ علم والا معاملہ کر لیا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی تبدیلی کے اس کو عربی زبان کی طرف نقل کیا جاتا ہے اور علم بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ قالون ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ یہ قالون جو ہے، یہ امام قالون رحمہ اللہ قرات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ شاگرد ہیں امام نافع رحمہ اللہ کے، اور امام نافع رحمہ اللہ جو ہیں قرائے سبعہ میں سے ہیں بھائی، قرائے سبعہ میں سے، اور یہ ان کے شاگرد تھے امام قالون، اور یہ روم کے قیدیوں میں سے تھے. پھر معلوم ہوا یہ اسلام لائے ہوں گے اور پھر وہیں پر امام نافع کی صحبت اختیار کی اور ان سے پورے قرآن کی قرات انہوں نے پورے قرآن کے سیکھا، اور یہ انتہائی بہرے تھے بھائی، حتیٰ کہ کہتے ہیں اتنے بہرے تھے کہ ڈھول کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دیتی تھی بھائی. تو یہ قرات سیکھنے کے لیے اپنے کان کو استاد کے منہ کے قریب رکھتے تھے تو پھر اس سے کچھ آواز ان کو سنائی دیتی تھی بھائی. اور اسی طرح جب یہ استاد بن گئے تو یہ بہرے تھے، اب تلامذہ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سنتے تو نہیں تھے لیکن طلبہ کے ہونٹوں کی حرکت سے وہ ان کی غلطی کو پکڑ لیا کرتے تھے، غلطی بتلا دیا کرتے تھے بھائی. جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ انتہائی بہرے تھے، ڈھول وغیرہ کی آواز بھی نہیں سنتے تھے لیکن یہ قرآن کا اعجاز تھا، یہ ان کی کرامت تھی کہ قرآن کو بغیر کسی رکاوٹ کے یہ بہترین انداز میں سنتے تھے. تو بعضوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں. تو بہرحال یہ رومی قیدیوں میں سے تھے اور ان کا نام عیسیٰ تھا اور بہت بڑے قاری گزرے بھائی. رومی زبان میں قالون اچھی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی اچھی چیز ہو اس کو قالون کہتے. تو آپ کی قرات چونکہ بہت زبردست تھی تو اس لیے امام نافع نے یا اسی زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ بھی تھے، ان دونوں میں سے ایک نے آپ کو یہ قالون کا نام دیا بھائی، تو آپ امام قالون کے نام سے مشہور ہیں بھائی. تو یہ جو قالون ہے دیکھو یہ اس میں جنس ہے ہر اچھی چیز کو کہتے، یہ علم نہیں تھا عجمی زبان میں لیکن اس کے ساتھ علم والا معاملہ کیا گیا، یعنی جب اس کو عربی زبان کی طرف نقل کیا گیا تو بغیر تصرف کے اس کو علم بنا دیا گیا. تو گویا یہ عجمی زبان میں حقیقتاً تو علم نہیں تھا لیکن حکمن علم تھا، یعنی اس جیسا حکم ہو گیا اس کا کہ بغیر تصرف کے یہ نام بنا دیا گیا بھائی. تو صاحب کافیہ کے نزدیک نوحن جیسے لفظ جو ہیں وہ منصرف ہیں کیونکہ اس کے اندر دوسری شرط پوری نہیں، جبکہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کے نزدیک نوحن کا لفظ ہندن کی طرح ہے اور ہندن کے اندر تانیث معنوی تھی اور دوسری شرط پوری نہیں تھی کہ تین سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا عجمہ ہو. تو ہند ان کے اندر اختیار ہے، آپ چاہے اس کو منصرف پڑھیں چاہے غیر منصرف پڑھیں. تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ نوحن بھی اسی طرح ہے، اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. تو گویا وہ نوحن کو قیاس کرتے ہیں ہند ان پر بھائی، جبکہ صاحب کافیہ جو ہیں ان کے نزدیک حق بات یہی ہے کہ نوحن کو غیر منصرف پڑھنا صحیح نہیں، چنانچہ اسی لیے انہوں نے نوح کی مثال کو ذکر کیا. تو صاحب کافیہ کے نزدیک عجمہ کے اندر اگر وہ تین حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے اور یہ عجمہ ان کے نزدیک مؤثر نہیں ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ماہ اور جور، تعریف معنوی کے اندر ماہ اور جور لفظ گزرے تھے، تو ماہ اور جور جو ہے اس میں تانیث معنوی ہے، درمیان والا حرف ساکن ہے لیکن وہاں پھر بھی عجمہ کا اعتبار کیا گیا اور وہ لفظ عربی میں غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. تو وہاں پر تو ماہ اور جور کے اندر درمیان والا حرف ساکن ہے پھر بھی عجمہ کا اعتبار کیا جا رہا ہے، اور نوح کے اندر آپ فرماتے ہیں درمیان والا ساکن ہے لیکن عجمہ کا اعتبار نہیں کریں گے. تو اس کا بھی جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ ماہ اور جور کے اندر جو دو سبب ہیں غیر انصراف کے وہ علمیت اور تانیث ہے، عجمہ سبب نہیں ہے، عجمہ صرف ان دو باقی سببوں کو تقویت دے رہا ہے، ان کو قوت دے رہا ہے. تو دو اسباب اس میں کیا ہیں؟ ایک علمیت اور ایک تانیث معنوی ہے تو عجمہ صرف اس کو قوت دے رہا ہے، تو لہذا وہاں عجمہ کو ہم نے سبب قرار نہیں دیا، صرف تقویت کے لیے ایک سبب قرار دیا ہے. جبکہ نوح جو ہے، نوح کے اندر اگر عجمہ کا اعتبار کیا جائے تو دو سبب جو بنیں گے وہ عالمیت اور عجمہ بنیں گے، تو عجمہ کو گویا مستقل سبب قرار دینا پڑے گا. حالانکہ عجمہ جب تین حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو تو اس کو مستقل سبب قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے کلمے میں کوئی ثقل پیدا نہیں ہوا. بھائی اب آگے دیکھیے آج کا سبق. بھائی کہتے ہیں الجمع وهو سبب قائم مقام السببین شرطه اي شرط قيامه مقام السببين صيغه منتهى الجموع. جی آج چھٹا سبب ہے بھائی اسباب منع صرف میں سے جمع. بھائی اور یاد رکھو یہ جو جمع ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے بھائی، دو سببوں کے، اور اس کے اندر شرط ہے کہ منتہا الجموع کا صیغہ ہونا چاہیے بھائی، منتہا الجموع کا. دیکھیے بھائی پہلے متن دیکھ لیں. کہتے ہیں الجمع شرطه صیغۃ منتہا الجموع بغیرها ان کا مساجد و مصابیح و اما فرازنۃ فمنصرف. جمع سبب بنے گا غیر انصراف کا، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صیغہ منتہا الجموع والا ہونا چاہیے. منتہا الجموع کا صیغہ آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے، وہ صیغہ ہے جس میں درمیان میں الف آتا ہے جمع کے لیے، اور الف سے قبل دو حروف ہوں گے، اور الف کے بعد یا تو ایک حرف مشدد آئے گا یا دو حروف ہوں گے یا تین ایسے حروف ہوں گے جن کا درمیان والا حرف ساکن ہوگا. بھائی جیسے مسجد کی جمع مساجد. بھائی اسی طرح دوابا، دیکھو یہاں الف کے بعد ایک حرف مشدد ہے، اور جیسے مصابیح بھائی، جیسے یہاں الف کے بعد تین حروف ہیں اور درمیان والا حرف ساکن ہے. بھائی اور بھائی آپ کو یاد ہو جہاں صاحب کافیہ نے اسباب مناصر شروع کیے تھے تو وہاں پر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہیں وہ دو ہیں بھائی، ایک جمع اور ایک تانیث کے جو دو الف ہیں. بھائی جب یہ دونوں جس لفظ کے اندر آ جائیں تو اس لفظ میں دوسرے سبب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام ہیں. اور وہاں انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ جمع دو سببوں کے قائم مقام کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کی جمع آتی ہے، پھر آگے اس کی دوبارہ جمع آتی ہے، پھر آگے اس جمع کی آگے دوبارہ جمع آتی ہے، تو دو دو تین تین چار چار مرتبہ یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے ایک مفرد آیا، اس کے بعد اس کی جمع، پھر اس جمع کی آگے جمع، پھر آگے اس جمع کی جمع کی جمع. تو اس میں یہ جو جمع منتہا الجموع کا صیغہ ہے یہ بعض اوقات دوسرے درجے پر آتا ہے. کس درجے پر؟ مثلا مفرد کی ایک جمع آئی، پھر اس جمع کی جو جمع آتی ہے وہ منتہا الجموع کا صیغہ ہوتا ہے. تو دیکھو اس کے اندر گویا دو دفعہ جمعیت آ گئی، اس لیے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. کتنی دفعہ جمع ہوا؟ دو مرتبہ. تو کبھی کبھار تو دو مرتبہ حقیقتاً جمع ہوگا، اور کبھی کبھار پہلی مرتبہ میں یہ وزن آ جاتا ہے جمع کے اندر. بھائی پہلی مرتبہ میں، جیسے مسجد کی جمع مساجد، پہلی مرتبہ میں ہی یہ وزن آ گیا، تو یہ حقیقتاً تو دو دفعہ جمع نہیں لیکن صورت اسی جیسی ہے، تو یہ یعنی یوں کہیں گے کہ یہ حکمن دو دفعہ جمع ہے. کیا ہے؟ حکمن دو دفعہ، یعنی اس کو بھی وہی حکم دے دیا کہ یہ بھی گویا دو دفعہ جمع ہوئی ہے، اور دو دفعہ جمع ہوئی تو یہ دو سببوں کے قائم مقام ہو گئی. تو اب یہ جمع اکیلی ہی سبب بنے گی غیر انصراف کا، کیونکہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. تو کہتے ہیں الجمع شرطه صیغۃ منتہا الجموع، جمع جو ہے اس کی شرط جو ہے منتہا الجموع کا صیغہ ہے. بغیرها ان، بغیر ہا کے، یعنی اس صیغے کے ساتھ ہا نہ جڑے. بھائی جیسے فرازینتن، بھائی فرازینہ جمع ہے فرزین کی یا فرزان کی، آپ کو صاحب جامی بھی آگے بتلائیں گے. بھائی अब फराजीना देखो ये वही वजन है लेकिन आखिर में ता जुड़ी हुई है तानीस वाली जो हालत वक्फ में हा के साथ बदल जाती है। जैसे जारिबुन की मुअन्नस क्या जारिबतुन और इसी पर वक्फ करेंगे तो क्या बन जाएगा जारिबह भाई। तो बिगैरी हा इन ये हा से मुराद ताय तानीस है यानी वो सीगा बगैर हा के हो हा यानी ताय तानीस उसके साथ जुड़ी हुई ना हो तो फराजीनतुन जैसे लफ्ज निकल गए भाई क्योंकि उसके साथ ताय तानीस जुड़ी हुई है। आगे मिसालें भी जिक्र की का मसाजिद व मसाबीह भाई जैसे कि मसाजिद और मसाबीह है भाई। यहां एक और कीमती बात याद रखना यह जमा मुंतहल जुमों का सीगा जो जिक्र किया इससे मुराद वजने सूरी है भाई। एक वजने सरफी होता है एक वजने सूरी होता है और एक वजने अरूजी होता है इल्म अरूज जो जिसमें ये अशार का वजन आप पढ़ेंगे भाई अशार का वजन आगे ये फन बाकायदा आ जाएगा। ये जो अशार हैं इनके मखसूस औजान होते हैं और एक हर्फ इधर उधर हो जाए तो पूरे शेर का वजन खराब हो जाता है तो उसमें खास औजान होते हैं तो उसको वजन अरूजी कहते हैं। ये अशार का जो इलम है इस इलम का नाम है इल्म अरूज तो वो जो वजन होता है उसको वजन अरूजी कहते हैं। कितनी किस्में हो गई वजन की तीन एक वजन सरफी एक वजन सूरी स्वाद के साथ सूरत से है वजन सूरी और एक वजन अरूजी। वजन सरफी वो है जिसमें हरकात और सकनात भी एक जैसी होती हैं और हर्फ असली के मुकाबले में असली आता है जायद के मुकाबले में जायद आता है। जैसे आपसे कोई पूछे जारिबुन का क्या वजन है आप क्या कहते हैं फाइलुन। देखा जात के मुकाबले में क्या लाए फा और अलिफ जायद है तो उसके मुकाबले में अलिफ लाए रा असली है तो उसके मुकाबले में आइन लाए और बा भी असली है तो उसके मुकाबले में लाम लेकर आए भाई। आपसे कोई पूछे अकरमा इसका क्या वजन है आप क्या कहेंगे अफआला। तो देखो जायद के मुकाबले में जायद लाए असली के मुकाबले में असली लाए और हरकात और सकनात बिल्कुल एक जैसी अकरमा अफआला। देखो अकरमा में हमजा पर क्या है जबर अफआला में भी हमजा पर जबर अकरमा के अंदर काफ साकिन है अफआला में फा साकिन है अकरमा में रा पर जबर है अफआला में भी आइन पर जबर है। बात समझ में आ रही है तो वजन सरफी किसे कहते हैं कि असली के मुकाबले में असली आए जायद के मुकाबले में जायद आए और हरकात और सकनात बिल्कुल एक जैसी हों। दूसरा वजन है वजन सूरी वो है जिसके अंदर सिर्फ हरकात और सकनात एक जैसी होती हैं अलबत्ता असली के मुकाबले में असली या जायद के मुकाबले में जायद इसमें नहीं होता भाई। जैसे देखो जैसे मसाजिद इसी तरह जवारिब इसी तरह असाविर ये देखो तीनों की सूरत एक जैसी है। मसाजिद किस वजन पर मफाइल जी असाविर किस वजन पर अफाइल और जवारिब किस वजन पर फवाइल। तो देखो वजन सरफी तीनों के अलग अलग हैं। मसाजिद का वजन आपने क्या बताया मफाइल जवारिब का क्या बताया फवाइल और असाविर का क्या बतलाया अफाइल बतलाया। तो वजन सरफी तीनों के अलग अलग हैं लेकिन वजन सूरी तीनों के एक है भाई। तीनों के अंदर अलिफ से कबल दो हरूफ हैं और दोनों पर फतहा है और तीनों के अंदर अलिफ के बाद दो हरूफ हैं जिनमें से पहले के नीचे कसरा है भाई। बात समझ में आ रही है तो सूरत बिल्कुल एक जैसी है हां अलबत्ता असली के मुकाबले में असली या जायद के मुकाबले में जायद यहां यह नहीं देखा जाता बस सूरत एक जैसी होनी चाहिए यानी हरकात और सकनात एक जैसी होनी चाहिए। जबर के मुकाबले में जबर आए जेर के मुकाबले में जेर आए सुकून के मुकाबले में सुकून आए भाई सूरत समझ में आ गई। और तीसरा है वजन अरूजी भाई वजन अरूजी के अंदर फिर हरकात और सकनात भी एक जैसी होना जरूरी नहीं असली के मुकाबले में असली या जायद के मुकाबले में जायद, यह भी नहीं देखने की जरूरत। हरकात और सकनात एक जैसी होनी चाहिए, यानी फतहा के मुकाबले में फतहा आए, जम्मा के मुकाबले में जम्मा आए, यह भी देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसमें यह देखा जाता है मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक होना चाहिए और साकिन के मुकाबले में साकिन होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मसलन लिखें, एक लफ्ज लिखें अपने सामने, जरा लिखिए भाई, शरीफुन, शरीफुन। अब आपसे कोई पूछे कि शरीफुन का वजन सरफी क्या है, आप क्या कहेंगे? फाइलुन, फाइलुन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसका वजन अरूजी क्या है, कि इसका वजन अरूजी क्या है, तो याद रखो इसका वजन अरूजी है फुलुन। लिखो जरा भाई, लिखना किस तरह, इधर देखो, फा आइन वो और लाम और फिर नून भी साथ लिखना है, फुलुन। लिखिए भाई फुलुन, लिख लिया, फा आइन वो लाम और आखिर में नून भाई। अब देखो शरीफ उनका वजन क्या है, वजन अरूजी फुलुन है। शरीफ उनमें पहला हर्फ क्या, शीन मुतहर्रिक है। फुलुन में भी पहला हर्फ क्या, फा मुतहर्रिक है। शरीफुन में दूसरा हर्फ रा, वो भी मुतहर्रिक है। और फुलुन में भी आइन दूसरा हर्फ जो है वो मुतहर्रिक है। शरीफुन के अंदर तीसरा हर्फ या जो है वो साकिन है, फुलुन में भी तीसरा हर्फ वाव जो है साकिन है। शरीफुन के अंदर आखिर में फा मुतहर्रिक है और फिर आगे तनवीन का नून है जो साकिन है, तो फुलुन के अंदर भी आखिर में लाम जो है मुतहर्रिक है और आगे नून साकिन है। तो अब देखो शरीफुन का वजन अरूजी क्या, फुलुन। सिर्फ देखो हरकतें भी एक जैसी नहीं, बस मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक है और साकिन के मुकाबले में साकिन है भाई। तो यहां याद रखना सीगा मुंतहल जुमुआ में जो सीगा जिक्र किया गया उससे वजन सूरी मुराद है, वजन सरफी भी मुराद नहीं और वजन अरूजी भी मुराद नहीं है भाई। यानी अलिफ से कबल दो हरूफ होने चाहिए और दोनों पर फतहा होना चाहिए, और अलिफ के बाद एक हर्फ मुशद्दद हो, या दो हर्फ हो जिनमें से पहले के नीचे कसरा हो, या तीन हरूफ हो जिनमें दरमियान वाला साकिन हो भाई। तो कहते हैं का मसाजिदा व मसाबीहा, जैसे कि मसाजिद और मसाबीह हैं, व अम्मा फराजीनतुन फमुनसरिफुन, और बाकी फराजीनतुन का लफ्ज जो है वो मुनसरिफ है, क्योंकि इन्होंने क्या शर्त लगाई थी कि सीगा मुंतहल जुमुआ का हो बगैर हा के, और ये तो हा के साथ है, यानी इसके साथ तो ताय मरबूता जुड़ी हुई है भाई। अब देखिए भाई शरा के साथ इबारत देखिए, कहते हैं अलजमऊ हुआ सबबुन काइमुम मकाम सबबैनी, जमा जो है हुआ सबबुन, सबबुन है मौसूफ और काइमुन है उसकी सिफत भाई, और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी, कहते हैं वह हुआ सबबुन और वो ऐसा सबब है, काइमुम मकाम सबबैनी, जो दो सबबों के कायम मकाम है, शर्तुहु इसकी शर्त जो है, आई शर्तु कियामी ही मकाम सबबैनी, यानी इसके दो सबबों के कायम मकाम होने की शर्त जो है, सीगतु मुंतहल जुमुई, वो मुंतहल जुमुआ का सीगा है भाई। वो किसे कहते हैं, कहते हैं वही सीगतुल्लती कान अव्वलुहा मफ्तूहं व सालिसुहा अलिफन, ये वो सीगा है जिसका अव्वल जो है मफ्तूह हो, यानी अव्वल हर्फ पर फतहा हो, वसालिसुहा अलिफन और तीसरा हर्फ अलिफ हो भाई। दूसरे हर्फ को जिक्र नहीं किया इसलिए क्योंकि अलिफ से माकबल हमेशा फतहा ही आ सकता है, कोई और हरकत नहीं आ सकती जी। व बादल अलिफ हरफानी, और अलिफ के बाद दो हर्फ हों, देखो हर्फ मुशद्दद को जिक्र नहीं किया क्योंकि हर्फ मुशद्दद भी दरअसल दो हर्फ ही होते हैं। तो कहते हैं वह बादल अलिफ हरफानी, और अलिफ के बाद दो हर्फ हों, औ सलासतुन औसतुहा साकिनुन, देखो सलासतुन है नकेरा, और नकेरा के बाद मैंने आपको बतलाया था फेल आ जाए तो वो उमूमन उसके लिए सिफत बनता है, और फेल बराह रास सिफत बनेगा या अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला बनेगा, और जुमला बनकर सिफत बनेगा जुमला बनेगा और फिर सिफत बनेगा। इससे आपको एक और बात भी पता चल गई कि जो जुमला होता है वो नकेरा के हुक्म में होता है, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया। तो सलासतुन आया नकेरा और उसके बाद औसतुहा साकिनुन, ये जुमला इस्मिया आ गया। इसके अंदर औसतुहा है मुबतदा और साकिनुन है उसकी खबर। तो ये जुमला इस्मिया आया और नकेरा के बाद जुमला है तो वो अमूमन उसके लिए क्या बनता है? सिफत। तो ये औसतुहा साकिनुन सलासा के लिए सिफत बनेगा। और मौसूस सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं? मौसूस से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। देखिए भाई, कहते हैं वह बादल अलिफी हरफानी, और अलिफ के बाद दो हर्फ हों, औ सलासतुन औसतुहा साकिनुन, या ऐसे तीन हरूफ हों औसतुहा साकिनुन जिनके दरमियान वाला हर्फ साकिन हो। भाई वही सीगतुल्लती ला तुजमउ जमअत तकसीरी मर्रतन उखरा, और ये वो सीगा है अल्लती ला तुजमउ कि जिसकी जमा नहीं लाई जाती, जमअत तकसीर, जमे तकसीर भाई, मर्रतन उखरा एक मरतबा फिर दोबारा उसकी जमे तकसीर नहीं लाई जाती। भाई देखो वजह बतलाने लगे हैं, वजह बतलाने लगे हैं कि ये जमा मुंतहल जुमुअ का जो सीगा है इसको जमा मुंतहल जुमुअ क्यों कहते हैं। भाई आप लफ्जों पर गौर कर लें उसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। जमो मुंतहल जुमुअ यानी जिस पर जमाओं की इंतहा हो रही है, जमा मुंतहल जुमुअ ऐसी जमा जिस पर जमाओं की इंतहा हो रही है। भाई मैंने आपको बतलाया कि अरबी में कभी कभार एक लफ्ज की जमा आती है, फिर आगे उस जमा की जमा आती है, फिर आगे फिर उसकी आगे जमा आती है, फिर आगे उसकी जमा आती है। यह सिलसिला बाज़ औक़ात चार चार पांच पांच मरतबा तक चला जाता है। तो इसके अंदर जमा मुंतहल जुमुअ का सीगा भी आएगा भाई। तो जमा आती जाएगी और जमा के औजान टूटते हैं, जैसे मस्जिद की जमा क्या आई? मसाजिद आई। मसाजिद ये तो पहले दर्जे में ही आ गई, लेकिन ये आमतौर पर दूसरे दर्जे में आती है, जैसे पीछे इसकी मिसाल गुजरी थी। कल्ब की जमा क्या आती है? अकलुब, और फिर अकलुब की जमा आती है अकालिब। इसी तरह नाम मवेशी को कहते हैं, नाम की जमा आती है अनाम, और फिर उसकी जमा आती है अनाइम भाई। इसी तरह सिवार कंगन को कहते हैं, वो जो हाथ में जेवर पहना जाता है, और उसकी जमा असवीरा आती है, और फिर असवीरा की जमा आगे असाविर आती है। तो देखो ये जमा बाज़ औक़ात दूसरे दर्जे में आती है। तो देखो ये जो जमा के बाद जमा आती है और फिर जमा आती है तो वजन टूटते चले जाते हैं। जैसे कल्ब, इसकी जमा क्या आई पहले? अकलुब। तो देखो अकलुब के अंदर कल्ब का वजन टूट गया। फिर अकलुब की जमा क्या आई? अकालिब। अकालिब के अंदर देखो वो अकलुब वाला वजन टूट गया, एक नई सूरत आ गई। इसी तरह नाम की जमा क्या आई? अनआम। देखो नाम का वजन टूट गया। फिर अनआम की जमा क्या आई? अनाइम भाई, इसमें वो अनआम का वजन फिर टूट गया। इसी तरह सिवार की जमा असवीरा, देखो सिवार का वजन टूट गया। फिर असवीरा की जमा क्या आई? असाविर, जिसमें देखो फिर वो असवीरा वाला वजन टूट गया। तो ये जो जमे बनती जाती हैं तो इसमें माकबल वाली जमा का वजन टूट जाता है, माकबल वाली जमा का वजन टूट जाता है। लेकिन जब मुंतहल जुमुअ वाला सीगा आ जाए उसके बाद आगे भी जमे आ सकती हैं, लेकिन आगे फिर जमे सालिम आएंगी, जमे मुकस्सर नहीं। भाई मैंने आपको बतलाया था जमा दो किस्म पर है, एक जमा मुकस्सर एक जमा सालिम। जमे सालिम वो है जिसमें मुफरत का वजन टूटता नहीं, जैसे मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना, और इसी तरह मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन। देखो जमा में मुफरत का वजन नहीं टूटा, जबकि कभी कभार मुफरत का वजन जमा में टूट जाता है, जैसे रजुल की जमा रिजाल, मस्जिद की जमा मसाजिद। तो ये जो जमा मुंतहल जुमुअ का सीगा जब आ जाए तो उसके बाद फिर आगे जमा मुकस्सर नहीं आती। मसन कल्ब की जमा क्या आई? अकलुब, वजन टूट गया, मुफरत का वजन टूट गया। फिर अकलुब की जमा क्या आई? अकालिब, तो अकालिब में देखो अकलुब का वजन टूट गया। अब ये जो सीगा आ गया मुंतहल जुमुअ वाला, इसके बाद आगे अगर जमाएं आई तो उसमें वजन नहीं टूटेगा, यानी इससे आगे अगर जमा आई तो वो जमे सालिम होगी, जमे مقصر نہیں ہوگی. تو گویا یہ جمع منتحل جمعہ کا صیغہ وہ صیغہ ہے جس پر جمع مقصر کی انتہا ہو جاتی ہے. اس سے آگے پھر جمع مقصر نہیں آتی بلکہ کیا آ سکتی ہے؟ جمع سالم آ سکتی ہے. تو اس لیے اس کو صیغہ منتحل جمعہ کہتے ہیں کہ اس پر انتہا ہو رہی ہے. کس کی انتہا؟ جمع مقصر کی انتہا ہو رہی ہے. آگے جمع سالم تو آ سکتی ہے، جمع مقصر نہیں آ سکتی. کتاب پر دیکھیے، کہتے ہیں وہی الصیغۃ التی لا تجمع جمع تکسیر مرۃ اخرى، اور یہ وہ صیغہ ہے کہ جس کی جمع تکسیر دوبارہ نہیں لائی جاتی. لا تجمع جمع تکسیر، یہ جمع تکسیر یاد رکھنا، یہ مفعول مطلق ہے بھائی. لا تجمع، اس کے اندر ہیا ضمیر جو کس کو راجع؟ یہ اللتی کو، مراد وہ صیغہ ہے بھائی پیچھے جو موصوف ہے، اللتی کو راجع. جمع منتحل جمع وہ صیغہ ہے، اللتی لا تجمع، جس کو جمع نہیں کیا جاتا. جمع تکسیر، کون سی جمع؟ جمع تکسیر. بھائی آپ نے پڑھا ہے مفعول مطلق جو ہے وہ کبھی کبھار نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ایک چیز کی قسم. جلست جلست القاری، میں بیٹھا کس کی طرح؟ قاری کے بیٹھنے کی طرح. تو یہاں پر بھی لا تجمع جمع تکسیر، اس کی جمع نہیں لائی جاتی. کون سی جمع؟ جمع تکسیر نہیں لائی جاتی. ویسے جمع آ سکتی آگے، لیکن جمع تکسیر نہیں آتی. تو کہتے ہیں وَلِحَادَ سُمِّيَتْ سِيغَةَ مُنْتَحَلْ جُمُعِ، اسی لیے اس کو منتحل جمعہ کا صیغہ کہتے ہیں. لِأَنَّهَا جُمِعَتْ فِي بَعْضِ السُّورِ مَرَّتَيْنِ تَقْسِيرًا، اس لیے کیونکہ اس کی جمع لائی جاتی ہے بعض صورتوں میں. مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ. تَقْسِيرًا، تقسیر کرتے ہوئے، اس کو توڑتے ہوئے. اس کی جمع لائی جاتی ہے بعض صورتوں میں دو مرتبہ تکسیر کرتے ہوئے. بھائی دو مرتبہ وزن ٹوٹتا ہے، جیسے ابھی مثالیں گزر گئیں بھائی. قلب کی جمع کیا؟ اقلب. اور اقلب کی جمع کیا؟ اقالب. تو دیکھو دو دفعہ وزن ٹوٹ گیا بھائی. فانتہا تکسیر اہل مغیر لصیغتی، فانتہا، تو انتہا ہو جاتی ہے تکسیر اہا، اس کی وہ تکسیر. المغیر لصیغہ، جو صیغے کو بدلنے والی ہے. جب منتحل جمعہ کا صیغہ آ جائے تو اس تکسیر کی انتہا ہو جاتی ہے جو صیغے کی صورت بدلنے والی ہے. یعنی اب تکسیر نہیں آئے گی، یعنی جمع مقصر آگے نہیں آئے گی بلکہ جمع سالم آئے گی. تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا جُمِعَتْ فِي بَعْضِ السُّورِ مَرَّتَيْنِ تَقْسِيرًا، اس لیے کیونکہ اس کی جمع بعض صورتوں میں دو مرتبہ لائی جاتی ہے. تَقْسِيرًا، وزن کو توڑتے ہوئے. فَانْتَهَا تَقْسِيرُهَا الْمُغَيِّرُ لِلصِّيغَةِ، تو پھر انتہا ہو جاتی ہے اس کی اس تقسیر کی جو بدلنے والی ہے صیغے کو. فَأَمَّا جَمْعُ السَّلَامَةِ فَإِنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الصِّيغَةَ، تو باقی جمع سلامت جو ہے وہ صیغے کو بدلتی نہیں ہے. فَيَجُوزُ أَن تُجْمَعَ جَمْعَ السَّلَامَتِ، تو جائز ہے کہ اس کی جمع سلامت لائی جائے، پھر دوبارہ اس کو جمع کیا جائے. کس طریقے پر؟ جمع سلامت کے طریقے پر. بھائی پیچھے میں نے بتلایا تھا لا تجمع جمع تکسیر، یہ جمع تکسیر کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول مطلق. یہاں پر بھی فیجوز ان تجمع جمع السلامتی، یہ جمع سلامت بھی کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول مطلق. پس جائز ہے ان تجمع جمع السلامتی، کہ اس کی جمع سلامت لائی جائے. کما یجمع ایامین جمع ایمن علی ایامنین، جیسے کہ جمع لائی جاتی ہے ایامن کی. کس کی؟ ایامن، جمع ایمن، وہ ایامن جو جمع ہے ایمن کی. علا ایامنین، کیا لائی جاتی ہے اس کی جمع؟ ایامنین. بھئی دیکھو ایمن یہ کوئی کہتے ہیں جگہ کا نام ہے، ویسے ایمن دائیں کو بھی کہتے ہیں بھئی، دایاں اور بایاں بھئی، یعنی دائیں جانب والا اور بائیں جانب والا، تو اس کو ایمن اور ایسر کہتے ہیں. ایمن کا معنی دایاں اور ایسر کا معنی بایاں، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جگہ ہے اس کا نام ہے ایمن. اس ایمن کی جمع آتی ہے ایامن، اور ایامن دیکھو کون سا صیغہ ہے؟ جمع منتحل جمع والا. اس کی جمع آگے ایامنین یا ایامنون آتی ہے، یعنی جمع سلامت آتی ہے. تو صیغہ منتحل جمع کا یہ معنی نہیں کہ آگے اس کی جمع ہی نہیں آئے گی، اس کی جمع آ سکتی ہے. جیسے ایامن کی جمع کیا آئی؟ ایامنون یا ایامنین آئی، لیکن وہ جمع مقصر نہیں ہے بلکہ جمع سلامت ہے بھائی. तो कहते हैं कमा युजमाउ अयामिनु जमउ ऐमना, जैसे कि ऐमन की जमा अयामिन जो है उसकी जमा लाई जाती है अला अयामिनीन अयामिनीन की सूरत पर, व सवाहिबु जमउ साहिबतिन अला सवाहिबात, और जैसे साहिबा की जमा है सवाहिब और सवाहिब की जमा फिर सवाहिबात लाई जाती है। अब देखो सवाहिब, सवाहिब कौन सा सीगा है? मुंतहल जुमुआ वाला भाई, और इसकी जमा आगे सवाहिबात आती है, तो जमे मुकस्सर आगे नहीं आई बल्कि कौन सी जमा आई? जमे सलामत आई। तो कहते हैं वह सवाहिबु जम उ साहिबतिन, और वो सवाहिब जो जमा है साहिबतिन की आला सवाहिबात, उसकी जमा सवाहिबात पर लाई जाती है। वह इन नमश तुरी तत्ली तकून सीगतु मसून तनान कबूली तगयूरी फतु असीरो। भाई वजह क्या है? जमा को सबब करार दिया और मुंतहल जुमों के सीगे को उसके लिए शर्त करार दिया। कहते हैं वजह इसकी ये कि सबब बनेगी जमईयत भाई, ये जमा होना ये है सबब भाई। तो अब इसके अंदर हमने शर्त लगा दी कि मुंतहल जुमों का वजन होना चाहिए ताकि सीगा आगे महफूज हो जाए वजन टूटने से, सीगा महफूज हो जाए आगे। अब आगे इसका वजन नहीं टूटेगा, अगर आगे इसके बाद कोई जमा आए तो वह जमे सलामत आएगी, जमे मुकस्सर नहीं आएगी। तो सीगा महफूज हो गया हर किस्म की तब्दीली से, जब हर किस्म की तब्दीली से महफूज हो गया तो इसकी जमईयत के अंदर कुव्वत आ गई भाई। क्या आ गई? कुव्वत आ गई, क्योंकि असबाब मनासर्फ जो हैं ये इसम को असल से निकाल देते हैं। इसम के अंदर असल है मुनसरिफ होना और गैर मुनसरिफ क्या है? खिलाफुल असल। तो ये असबाब मनासर्फ क्या करते हैं? इसम को अपनी असल से निकाल देते हैं। तो इसके लिए सबब कवी चाहिए, ज़ईफ सबब काम नहीं करेगा। तो अगर जमा जो है वो आगे फिर टूटकर उसका वजन बदल रहा है तो मालूम हुआ फिर वो जमईयत इतनी कवी नहीं, लेकिन सीगा मुंतहल जुमुआ के अंदर तो दोबारा वजन नहीं टूटता। मालूम हुआ अब ये जो जमईयत है ये तब्दीली से महफूज है, इसके अंदर कुव्वत मौजूद है, अब आगे इसका वजन नहीं टूटेगा, अब ये मुअस्सिर बनेगी और वो लफ्ज को क्या बना देगी? गैर मुनसरिफ बना देगी। ये माना है वह इन नमश तुरीत ली तकून सीगतु मसूनतन अन कबूल तगयूरी, और शर्त लगाई गई है ये मुंतहल जुमों के सीगे की ताकि इसका सीगा जो है ये जमा का ये महफूज हो जाए अन कबूल तगयूरी, तब्दीली को कबूल करने से ये सीगा महफूज हो जाए तब्दीली को कबूल करने से। अब तब्दीली को कबूल ना करे फतुअस्सिरु तो फिर ये मुअस्सिर होगा, अपना असर दिखाएगा क्योंकि अब इसके अंदर कुव्वत है भाई। बिगैरी हा इन बगैर हा के भाई, बगैर हा के बिगैरी हा इन मुनकलिबतन अंता इतानी सी हालत अल वक्फी अविल मुरादु बिहाता उतानी सी बेअतिबारी माया उलू इलेही हालत अल वक्फी। भाई सबब क्या है? गैर इंसिराफ का सबब है जमा, मुंतहल जुमों का सीगा नहीं, बल्कि सबब क्या है? जमा। हां उस जमा के लिए आगे शर्त क्या है? सीगा कौन सा हो? मुंतहल जुमों वाला हो, बिगैरी हा इन बगैर हा के। और मैंने बताया हा से क्या मुराद है? तय तानीस मुराद है भाई, जो हालत वक्फ में किससे बदल जाती है? हा से। तो यहां साहिब काफिया ने जिक्र किया बगैरी हा इन, वो मुंतहल जुमों का सीगा बगैर हा के होना चाहिए। तो इससे या तो हा ही मुराद है, कौन सी हा? वो हा, वो जो ताय तानीस थी जो वक्फ की हालत में क्या बन गई? हा बन गई। तो ये हा मुराद है जो किससे बदल कर आई है? ता से। किससे बदल कर आई है? तो मालूम हुआ हा बोलकर हा ही मुराद है। हा बोलकर कौन सी हा? जो किससे बदल कर आई है? तायतानी से बदल कर आई है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बिगैरी हा इन मुनकलिबतन अन ताइतानी सी, इस हाल में कि वो हा जो है वो बदली हुई हो अन ताइतानी सी तायतानी से हालत अल वक्फी, वक्फ की हालत में। तो हा बोलकर क्या मुराद? हा ही मुराद। अविल मुरादु बिहा ता उत्तानीस, या जिक्र तो है हा और मुराद है वो तायतानीस। क्या मुराद है? तायतानीस। अभी वो हा में बदली तो नहीं, अभी बदलेगी, तो चूंकि एक हालत इसकी आने ही वाली है, उस हालत की तरफ ये बदलने ही वाली है, तो अभी से ही उसको हा कह दिया, अभी से ही उसको हा कह दिया। जैसे वो हदीस पीछे गुजरी थी, मन कतल कतील फलहू सलबहू, मैंने बताया था यहां कतील बमाने मकतूल के है, जिसने किसी मकतूल को कत्ल किया। भाई मकतूल को क्या कत्ल किया जाएगा? मकतूल तो वो है जिसको कत्ल कर दिया गया, तो इससे मुराद जिंदा है, लेकिन चूंकि उसका मकतूल होना करीब था तो उसको हदीस में पहले से ही किसके साथ ताबीर कर दिया गया? मकतूल के साथ। और मैंने बताया इसको मजाज बिल मुशारफा कहते हैं। क्या कहते हैं? मजाज बिल मुशारफा। एक चीज एक वसफ के साथ मौसूफ होने ही वाली है, तो अभी से उसको, यानी उसको पहले से ही उसके साथ मौसूफ कर दिया जाए। तो एक शख्स जो कत्ल होने ही वाला है, पहले ही उसको क्या कह दिया गया? मकतूल कह दिया गया, मकतूल की सिफत के साथ उसको मौसूफ कर दिया गया। तो इसको क्या कहते हैं? मजाज बिल मुशारफा। शारफा युशारिफू, मुशारफा के माने करीब होना, चूंकि वो भी मकतूल होने के करीब है, इसलिए इसको मकतूल कह दिया गया। नीस, इसी को बतबार मा यऊलू के भी कहते हैं, बतबार मा यऊलू के। आला यऊलू के माने होते हैं लौटना, लौटना। एक चीज एक हालत की तरफ लौटने ही वाली है, करीब ही है, तो आपने अभी से उसको उसके साथ मौसूफ कर दिया। इसको क्या कहते हैं? बतबार मा या उलू के। तो इसके अंदर देखो, मन कतल कतीलन फलहू सलबहू, तो यहां कतील उनको कहा गया मजाज बिल मुशारफा के तौर पर, या यूं कहो बतबारे मा या उलू के कह दिया गया। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी बिगैरी हा इन, हा बोलकर ता मुराद है, तो ता को अभी से हा कह दिया, उसको अभी से हा कह दिए। किस एतबार से? मजाज बिल मुशारफा के, या बतबार मा या उलू के। भाई बगैर हा इन, दो तकरीर, दो यानी हा से या तो हा ही मुराद है या ता मुराद है। अगर हा से हा मुराद है तो माना यह है वो हा जो ता से बदलकर आई है वो वाली हा मुराद है। तो हा से मालूम हुआ हा बोलकर हा ही मुराद है, या हा बोलकर ता मुराद है, तो ता को अभी से हा कह दिया मजाज बिल मुशारफा के, या बैतबार मा या उलू के। भाई देखिए दोबारा तर्जमा कहते हैं, बिगैरी हा इन मुनकलिबतन अंता इतानी सी हालत अलवकफी, बगैर हा के इस हाल में कि वो बदली हुई हो ताय तानी से हालत वक्फ में, अविल मुराद बिहा ता उत्तानीसी, या इससे मुराद जो है ताय तानीस है। हा से क्या मुराद है? ताय तानीस है। बेअतिबारी मा यऊलू इलैही, बेअतिबार उस हालत के जिसकी तरफ वो लौटने वाली है, हालत अल वक्फ, वक्फ की हालत में, फला यरिदु नहु फवारिहा जमई फारिहतिन, लिहाजा फवारिह जैसे लफ्जों का एतराज वारिद नहीं हो सकता। फवारिह जमा है फारिहतुन की, फारिहतुन। अब फवारिह के आखिर में तो हा है, तो भाई इसका एतराज आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह हा तो असली है, और बगैरी हा इनके अंदर जो हा का जिक्र था उससे क्या मुराद है? वो ताय तानीस जो है, फिर जो वक्फ की हालत में हा से बदल जाती है, वो मुराद है। तो फवारिह इससे निकल गया, क्योंकि इसके आखिर में ये जो हा है ये असली है, ये ताय तानीस से बदल कर नहीं आई। भाई तो कहते हैं, फला यरिदु नहु फवारिहा जमई फारिहतिन, लिहाजा फवारिह जो जमा है फारिहतुन की, उसका एतराज वारिद नहीं होता। फारिहतुन के माने हैं माहिर, भाई माहिर, माहिर। और इसी तरह इसका माना फुर्तीला भी है, भाई फुर्तीला चाको चौबंद, भाई तेज और तर्रार जो है, घोड़े की भी यह सिफत होता है, घोड़ा जो तेज और तर्रार घोड़ा हो उसको फारिहा कहते हैं भाई। और याद रखना एक सरफी नुक्ता भाई, फवारिह इसको फारिहतुन की जमा बनाया साहिब जामी ने, कि किसकी जमा है? फारिहतुन की है, फारिहुन की नहीं। इसलिए कि फारिहुन, देखो ये सिफत का सीगा है, और फाइल तवज्जो है, फाइल जब सिफत का सीगा हो, फारिहुन कौन सा सीगा है? فاعلن, تو فاعلن جب صفت کا صیغہ ہو مذکر ہو تو اس کی جمع فواعل نہیں آتی. ہاں فاعلتن ہو صفت کا صیغہ اس کی جمع فواعل آ سکتی ہے, اس کی جمع فواعل آئے گی. اور جو مذکر ہو فاعلن اس کی جمع فواعلون یا فواعلین آتی ہے. بھائی کیا بات ہوئی کہ صفت کا صیغہ فاعلن یا فاعلتن وزن پر آتا ہے, تو اگر وہ فاعلن وزن مذکر ہو تو اس کی جمع فواعل نہیں آئے گی بلکہ فواعلون یا فواعلین آئے گی. اور اگر صفت کا صیغہ تا کے ساتھ ہے یعنی مؤنث ہے فاعلتن, پھر اس کی جمع کیا آتی ہے فواعل وزن آتی ہے. اسی لیے صاحب جامی نے بتلایا کہ یہ فوارح یہ فارحن کی جمع نہیں ہے بلکہ کس کی جمع ہے فارحتن کی جمع ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ كَوْنُهَا بِغَيْرِهَا إِنْ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَعَهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى زِنَةِ الْمُفْرَدَاتِ. بھئی کیا وجہ ہے یہ شرط کیوں لگائی کہ بغیر ہا کے ہونا چاہیے بغیر ہا کے, تو وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر تائے تانی ساتھ آ کر جڑے گی اس وزن کے ساتھ تو پھر مفرد کا وزن بن جائے گا, جیسے آگے ذکر کریں گے فرازینتن فرازینتن کے آخر میں دیکھو یہ گولتا آ کر جڑ گئی تو یہ اب مفرد والا وزن بن گیا فرازینتن, اسی وزن پر آتا ہے علانیتن کراہیتن طواعیتن. دیکھو یہ سارے مفرد ہیں, علانیتن کراہیتن طواعیتن یہ سب کیا ہیں مفرد ہیں. تو جب اس جمع منتحل جمعہ کے صیغے کے آخر میں گولتا آ کر جڑ جائے جیسے فرازینتن تو یہ کس وزن پر ہو گیا کس صورت پر ہو گیا مفرد والے صورت پر ہو گیا, لہذا اس کی جمعیت میں کمزوری آ گئی. جب اس کی جمعیت میں کمزوری آ گئی اب یہ دو سببوں کے قائم مقام نہیں ہوگا. بھائی کہتے ہیں وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ كَوْنُهَا بِغَيْرِهَا إِنْ شرط لگائی گئی کہ یہ صیغہ بغیر ہا کے ہو لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَعَهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى زِنَةِ الْمُفْرَدَاتِ, اس لیے کیونکہ اگر یہ ہا کے ساتھ ہوا تو یہ مفردات کے وزن پر ہوگا. كَفَرَازِنَةٍ فَإِنَّهَا عَلَى زِنَةِ كَرَاهِيَةٍ وَتَوَاعِيَةٍ, جیسے کہ فرازینہ کیونکہ یہ جو ہے علازینتی کراہیتن و تواعیتن یہ کراہیہ اور تواعیہ کے وزن پر ہے. بمعنی الکراہتی و طاعتی جو کس معنی میں ہے کراہت اور طاعت, کراہیہ بمعنی کراہت کے ہے یعنی ناپسند کرنا, اور تواعیہ بمعنی طاعت کے ہے یعنی فرما برداری کرنا. فیدخل فی قوت جمعیتہ فطور, تو داخل ہو جائے گا اس کی جمعیت کی قوت کے اندر فطور. فطور کا معنی کمزوری. بھائی جب یہ مفرد کے وزن پر ہو گیا تو اس کی جمعیت کی قوت میں کمزوری واقع ہو گئی. فیدخل فی قوت جمعیتہ فطور, تو اس کی جمعیت کی جو قوت تھی اس کے اندر کمزوری داخل ہو گئی. اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھیں بھائی, کفرازینتن عبارت پر نظر ہے کفرازینتن فإنها على زینۃ کراہیۃ وطواعیۃ. فرازینہ کا لفظ عربی میں منصرف استعمال ہوتا ہے, اسی لیے کیا پڑھا آپ نے کفرازینتن, دیکھو منصرف پڑھا. اسی طرح على زینۃ کراہیۃ وطواعیۃ یہ کس وزن پر ہیں کراہیتن اور طواعیتن, دیکھو یہ بھی منصرف ہیں, یہ مفرد کا وزن ہے یہ تو منتحل جمعوں کا وزن ہی نہیں ہے, تو یہ بھی ان کو بھی منصرف پڑا آپ نے, اگرچہ یہ یہاں پر غیر منصرف ہیں, یہاں پر غیر منصرف ہیں. فرازینہ کے اندر دو سبب کیا ہیں, ایک تائے تانیس ہے, دوسرا فرازینہ سے فرازینہ کا لفظ مراد ہے تو یہ علم ہے بھائی, تو ایک علمیت آ گئی اور ایک تانیس آ گئی. اسی طرح کراہیہ سے کراہیہ کا لفظ مراد ہے تو ایک علمیت آ گئی, ایک تائے تانیس بھی ہے بھائی. اسی طرح تواعیہ کے اندر علمیت بھی ہے اور تانیس بھی ہے, تو یہ ہیں تو غیر منصرف. اور یہ بات میں نے پہلے بیان کی تھی وہ جو اوصاف کا ذکر آیا تھا وضعف منع افعن و اجدل و اخیلین, بھائی وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے, تو یہاں پر بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں کہ یہ ہیں تو غیر منصرف, लेकिन यहां इनको मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। किस वजह से? मुशाकलत की वजह से। किसकी वजह से? मुशाकलत, यानी ये हम शक्ल हैं। वो जो फराजीना अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है उसका नाम ही हमने फराजीना रख दिया। वो जो कराहिया और तवाइया अरबी जुबान में इस्तेमाल होते हैं उनका नाम ही हमने कराहिया और तवाइया रख दिया भाई। और वो तो मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं, तवज्जो है, वो क्या इस्तेमाल होते हैं? मुनसरिफ। और यहां पर अगरचे जो इबारत में आए इस वक्त ये गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन इनकी शक्ल उनकी शक्ल की तरह है और उन पर तो कसरा और तनवीन पढ़ते हैं, तो लिहाजा इन पर भी कसरा और तनवीन पढ़ेंगे और ये ज्यादा बेहतर है भाई। क्या है? ज्यादा बेहतर है। मालूम हुआ वहां सिफत के अंदर भी वज़ाउफा मनऊ अफअन व अजदलिन व अखयलिन पढ़ना बेहतर है भाई, यहां पर भी इसी तरह पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे देखिए भाई, कहते हैं वला हाजत इला इखराजी नहवी मदाइनीन फइन्नहु मुफ्रदुन महजुन। भाई बाज़ उलमा फरमाते हैं कि साहिब काफिया को बिगैरी हाइन व या इन निस्बती कहना चाहिए था, बिगैरी हाइन व या इन निस्बती, कि वो मुंतहल जुमा का सीगा बगैर हा के हो और बगैर या निस्बत के हो। या निस्बत जैसे लाहौर से लाहौरियन, लाहौरियन का क्या माना? लाहौर वाला। तो हा भी उसके साथ जुड़ी हुई ना हो उस सीगे के साथ और या निस्बत भी न जुड़ी हुई हो, ताकि मदाइनीयुन जैसे लफ्ज निकल जाएं। मदाइनीयुन मदाइन वाला, मदाइन शहर का नाम था, मदाइन क्या था? एक शहर का नाम था। जैसे लाहौर की तरफ निस्बत करते हैं लाहौरियन कहते हैं, तो मदाइन की तरफ निस्बत करते हुए क्या कहते थे? मदाइनीयुन। तो अब देखो मदाइन मदाइन इसके साथ या निस्बत जुड़ गई, अब ये मुफरद का सीगा बन गया। मदाइनीयुन का क्या माना? मदाइन वाला। तो ये या जो मिलाई जाती है किसके लिए? मुफरद के लिए। बात समझ में आ गई, मुफरत के लिए। तो अब देखो इसके आखिर में या निस्बत है और ये मुनसरिफ है, तो इसको भी निकालना चाहिए था साहिब काफिया को, बिगैरी हाइन व बिगैरी या इन निस्बती कहना चाहिए भाई। तो साहिब जामी उसका जवाब देंगे कि नहीं भाई, या निस्बत की कैद लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि मदाइनीयुन ये तो जमा है ही नहीं भाई, ये तो मुफरत है भाई। लाहौरियन का क्या माना? लाहौर वाला। मालूम हुआ एक शख्स है या एक चीज है जो किसकी तरफ मंसूब है? लाहौर की तरफ। तो लिहाजा मदाइनीयुन के अंदर जब यह निस्बत आ गई तो यह मुफरद के लिए है, यह जमा के लिए है ही नहीं। तो जब जमा के लिए है ही नहीं तो इसको निकालने के लिए कोई कैद लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात तो जमा की चल रही है, यह उसके अंदर दाखिल ही नहीं। कहते हैं वला हाजत इला इखराजी नहवी मदाइनीयिन, और मदाइनीयुन जैसे लफ्जों को निकालने की कोई हाजत नहीं। फइन्नहु मुफ्रदुन महज़ुन, इसलिए क्योंकि ये मुफ्रद महज है, यानी ये सिर्फ मुफ्रद है। लैसा जमअन ला फिल हाली वला फिल माआली, ना तो ये फिलहाल जमा है, वला फिल माआली और ना ही माआल, यानी आगे चलकर भी इसके जमा बनने का कोई इहतमाल नहीं है भाई। व इन नमल जम ओ मदाइनु, और जमा तो मदाइन है भाई। वह हुआ लफ्जुन आखर, और वह दूसरा लफ्ज है भाई। भाई देखो, एक है मदीना की जमा आती है मदाइन, तवज्जो है, मदीना की जमा क्या? मदाइन। ये मदाइन ये तो जमा है और ये गैर मुनसरिफ है, क्योंकि सीगा कौन सा है? मुंतहल जुमुआ वाला, ये दो सबबों के कायम मकाम है। जबकि मदाइन मैंने बताया वो एक शहर का नाम है, शहर का नाम है, यानी मदीना की जमा क्या? मदाइन। और फिर उस शहर का नाम ही क्या रख दिया गया? मदाइन रख दिया गया। अब यह आलम है, अब ये आलम है, और फिर इसी की तरफ जब निस्बत करते हैं तो या साथ मिला देते हैं या मुशद्दत, तो क्या कहते हैं? मदाइनीयुन कहते हैं। व इन्नमल जमउ मदाइनु व हुवा लफ्जुन आखर, और जमा तो मदाइन है और वो दूसरा लफ्ज है। बिखिलाफी फराजीनतिन, बखिलाफ फराजीना के। फइन्नहा जमउ फिरजीनिन औ फिरजानिन, इसलिए क्योंकि ये फिरजीन या फिरजान की जमा है। बिकसरिल फा इफा के कसरा के साथ, फिरजीन में भी फा के नीचे कसरा है और फिरजान में भी फा के नीचे कसरा है। तो फराजीना भी इसी तरह है, मलाइका भी इसी तरह है भाई। फराजिनतुन के आखिर में भी ता है और मलाइकतुन के आखिर में भी ता है, तो ये मुनसरिफ हैं भाई, ये मुनसरिफ हैं भाई। और फराजिना याद रखो, फराजिना जमा है फिरजीन की या फिरजान की भाई, और फिरजीन या फिरजान ये शतरंज के अंदर जो वजीर होता है उसको कहते हैं भाई। तो शतरंज के अंदर ये वजीर जो है ये सबसे खतरनाक होता है भाई, ये आठ तरफ चल सकता है और अगर दरमियान में कोई और गोटी वगैरह ना हो तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक चल सकता है। तो शतरंज में सबसे खतरनाक ये वजीर होता है और इसको फिरजीन का फिरजान कहते हैं और इसकी जमा फराजीना आती है भाई। फउलिमा मिम्मा सबका, बस ये बात मालूम हो गई वो जो माकबल में गुजर गया कि अन्ना सीगत मुंतहल जुमुई आला किस्मैनी, कि मुंतहल जुमुआ का सीगा जो है वो दो किस्म पर है। अहदुहुमा मा यकून बिगैरी हा इन वसानी ही मा यकून बिहा इन, उनमें से एक वो है जो बगैर हा के हो, वसानी ही मा, और दूसरा जो है मा यकून बिहा इन, जो किसके साथ हो, हा के साथ हो। फअम्मा मा काना बिगैरी हा इन फमुमतनिउन सर्फुहु, बस वो सीगा जो बगैर हा के है, फमुमतनिउन सर्फुहु, तो उसकी सर्फ मुमतनि है, लिवजूदी शर्ती तासीरी हा, बवजह उसकी मुअस्सिर होने की शर्त पाए जाने के, कि उसके मुअस्सिर होने की शर्त पाई जा रही है, जो बगैर हा के है, और शर्त भी क्या लगाई थी कि सिगा मुंतहल जुमुआ का बगैर हा के होना चाहिए। का मसाजिदा, जैसे कि मसाजिद है, मिसाल लिमा बादा अलिफ ही हरफानी, ये मिसाल है उस जमा की जिसके अलिफ के बाद दो हर्फ हैं। वह मसाबीह, और मसाबीह जो है मिसाल लिमा बादा अलिफ ही सलासतु अहरुफिन, कि ये मिसाल है उस जमा की जिसके अलिफ के बाद तीन हरूफ हैं। औसतुहा साकिनुन, तीन ऐसे हरूफ औसतुहा साकिनुन जिनके दरमियान वाला हर्फ साकिन है भाई। व अम्मा फराजिनतुं व अम्सालुहा मिम्मा हिया अला सीगति मुंतहल जुमुई मअल हाई फमुनसरिफुन, और बाकी फराजिनतुन और इसके मिसल लफ्ज जो हैं मिम्मा हिया, यानी कि वो अल्फाज जो अला सीगति मुंतहल जुमुई मअल हाई, जो मुंतहल जुमुई के सीगे पर हैं, मअल हाई किसके साथ, हा के साथ, यानी हा भी साथ है। फमुनसरिफुन, तो ये मुनसरिफ है। लिफवाति शर्ती तासीरिल जमईयति, बवजह फौत हो जाने के जमईयत के मुअस्सिर होने की शर्त के, इस वजह से लिफवाति शर्ती तासीरिल जमईयति, जमईयत के मुअस्सिर होने की जो शर्त है वो फौत हो गई है, वो रह गई है। वह हुआ कौनुहा बिला हा इन, और वो उसका बगैर हा के होना है, वो उसका बगैर हा के होना है। तो देखो व अम्मा फराजिनतुन फमुनसरिफुन, यहां भी उसी तरह भाई, फराजिनतुन यहां गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, एक तानीस है और एक आलमियत है, लेकिन यहां पढ़ेंगे कैसे, फराजिनतुन पढ़ेंगे, यानी मुशाकलत की वजह से जो अरबी जुबान में फराजिनतुन लफ्ज आता है वो मुनसरिफ होता है, तो इसको भी उसी तरह पढ़ेंगे भाई। बात समझ में आ गई? तो उन उलमा की राय राजह मालूम होती है जो फरमाते हैं कि इस किस्म के मौका पर मुनसरिफ ही लफ्ज को पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे भाई। बात समझ में आ गई, अच्छी तरह हल हो गया? चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।